अरे मैं कब से तुम्हें समझा रही हूं, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो ये खामाखा आ बैल मुझे सींग मार। हाँ क्या लगा रखा है? अब आगे मेरे और मेरे पति के बीच में आने की कोशिश की तो हम तुम्हें दादाजी के हाथ से बंदूक छीनकर इसी से गोली मार डालेंगे, समझे तुम? ऐसे बोलकर आस्था अबीर को धमकी देने लगी थी। तभी अरमान अबीर के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया और आस्था को उसने अपने पीछे खड़ा किया और अबीर के गाल को छूते हुए कहा, ये क्या सड़क छाप आशिक की तरह हरकतें करनी शुरू कर दिया तुमने अबीर सिंह राठौर? मुझे तो लगा था कि अपने प्यार से खुशी से आस्था को मनाने की कोशिश करोगे, लेकिन ये क्या, तुम्हारी तो हरकतें एकदम सड़क छाप आशिक जैसी हो गई हैं। हाँ अबीर सिंह राठौर, अरमान सिंघानिया ने तुम्हें जीने के लिए कुछ दिन दिए हैं, तो जाओ और उन्हें जियो, इससे पहले कि अरमान सिंघानिया अपना वादा भूल जाए। तेरे बाप से वादा किया था कि तेरी जान मैं नहीं लूंगा, लेकिन कब तक मैं इस वादे को निभाऊंगा ये बात मैं भी नहीं जानता हूँ। जल्दी ही अरमान ने आकाश को इशारा किया और आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान सभी ने अबीर सिंह राठौर को पकड़कर धक्के देकर सिंघानिया मेंशन से बाहर ले जाने लगे थे। तभी अबीर सिंह राठौर आस्था की ओर देखकर चिल्लाया और फिक्र जताते हुए बोला, बटरफ्लाई मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, और तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये कहते हुए अबीर एक नंबर का बेवकूफ लग रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो आस्था की ओर देखकर खुश होकर बोला, और हाँ मुझे छूने के लिए शुक्रिया। ऐसा कहकर अबीर एकदम बड़ा ही सड़क छाप आशिक लग रहा था, लेकिन वो आस्था का एक पक्का और सच्चा आशिक था जो इतनी आसानी से आस्था का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। वहीं अरमान का मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था और उसने आगे बढ़कर आस्था का हाथ पकड़ा और उसे लेकर कमरे में जाने लगा। हालांकि आस्था के हाथ में चोट लगी थी, लेकिन अरमान उस वक्त किसी चीज की कोई परवाह नहीं कर रहा था। उसने उसका चोट लगा हुआ हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और लगभग घसीटते हुए अरमान जल्दी ही आस्था को ऊपर कमरे में ले आया और सीधा दरवाजा जोरों से पटक दिया था। सभी लोगों का हैरानी के मारे बुरा हाल हो चुका था। वहीं नानी माँ तो गुस्से और नफरत के मिले जुले भाव से अबीर के बारे में सोच रही थी कि ना जाने उसकी बेटी की जिंदगी में ग्रहण लगने के लिए, उसकी खुशियों को ग्रहण लगाने के लिए ये अबीर कहाँ से मराया। वहीं प्रियंका को अब थोड़ी सी तसल्ली हुई थी, क्योंकि जिस तरह से अरमान आस्था को एकदम स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा था और जिस तरह से अबीर और अरमान दोनों ही आस्था के लिए झगड़ रहे थे, तो ये बात उसे काफी बुरी लगी थी। लेकिन अब अरमान का बर्ताव आस्था के लिए देखकर उसको दिल को सुकून पहुंच रहा था कि अब अच्छा है अरमान आस्था पर शक करेगा, और उसके शक को बस सिर्फ और सिर्फ प्रियंका को हवा देनी थी। उसके बाद जो वो चाहती थी वो काम हो जाना था। वहीं पूरा का पूरा फंक्शन खराब होने के बाद सबका मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था और सभी अपने अपने कमरों में चले गए थे। वहीं राधिका और रश्मि इस वक्त दोनों एक साथ थे और दोनों ही अपने सूने हाथों को देख रहे थे, जहां पर आज राधिका को सुमित के नाम की मेहंदी लगने वाली थी और वहीं रश्मि को आकाश के नाम की मेहंदी लगने वाली थी। लेकिन दोनों का ही मन पूरी तरह से उदास था और कहीं ना कहीं सोच रही थी कि ना जाने उनकी जिंदगी में शादी है भी या नहीं, क्योंकि हल्दी के फंक्शन में भी ड्रामा हो गया था और मेहंदी के फंक्शन में तो रही सही कसर भी पूरी हो चुकी थी कि तभी रौनक और नानी माँ दोनों ही राधिका और रश्मि के पास आ गई। दोनों को वहां देखकर रश्मि और राधिका दोनों ही हैरान हो गईं और कंफ्यूज्ड होकर बोली, क्या बात है नानी माँ, आप लोग यहाँ? तब रौनक ने जल्दी ही रश्मि का हाथ पकड़ा और नानी माँ ने राधिका का हाथ पकड़कर बोली, आप लोगों को क्या लगा कि आप लोगों का फंक्शन मैं इसी तरह से खराब होने दूंगी? आप लोगों के सूने हाथों पर क्या मेहंदी नहीं लगने दूंगी? मेरे बच्चे, मुझे सबका ख्याल है, पता नहीं मेरी आस्था की जिंदगी में क्या लिखा हुआ है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कान्हा जी उसके साथ कोई गलत नहीं होने देंगे। ये बोलकर नानी माँ थोड़ी सी रुवांसी सी हो गई थी और जल्दी ही नानी माँ और रौनक ने मिलकर राधिका और रश्मि दोनों के ही हाथों पर अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगा दी थी और दोनों के ही चेहरे जो मुरझाए हुए थे अब खिल उठे थे। वहीं दूसरी ओर अरमान आस्था को कमरे में ले आया था और सीधा बेड पर पटक दिया। वहीं आस्था का हाथ पूरा खून से सन चुका था। जिस हाथ में आज मेहंदी लगने वाली थी वो हाथ आज पूरी तरह से खून से सना हुआ था, खून से रंगा हुआ था। तब आस्था बहुत जोरों से रो रही थी। आस्था का इस तरह से रोना सुनकर अरमान पूरी तरह से इरिटेट हो चुका था। एक तो अबीर सिंह राठौर की बकवास बातें, ऊपर से आस्था का रोना अरमान को काफी हद तक इरिटेट कर रहा था और अरमान ने जल्दी ही आस्था के हाथ को कसकर फिर से पकड़ लिया था। लेकिन जैसे ही आस्था के मुंह से आह की आवाज निकली, अरमान का ध्यान अब आस्था के उसी हाथ पर गया था जिस हाथ पर उसने आस्था को जख्म दिए थे। अब अरमान गुस्से से अपने माथे पर टेप करने लगा था। वो बड़ा ही खतरनाक लग रहा था। इतना ही नहीं, आस्था को उस वक्त अरमान से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। आस्था को डरता हुआ देखकर कहीं ना कहीं उसे अबीर की बातें सच होती नजर आ रही थी कि आस्था तुमसे डरती है, वो तुमसे प्यार नहीं करती। यही सारी बातें अरमान के कानों में गूंज रही थी और वो सोच रहा था कि आस्था तो वाकई उससे डरती है। इसका मतलब अबीर राठौर सच कह रहा था, आस्था उससे प्यार नहीं करती,
बल्कि उससे डरती है। तभी अरमान थोड़ा सा आगे बढ़ा और आस्था की बाजू को कसकर पकड़ कर बोला, क्यों डरती हो मुझसे? हाँ, मैं क्या तुम्हें खतरनाक दिखाई देता हूँ? क्यों डरती हो? मुझसे डरना बंद करो, मुझसे प्लीज फॉर गॉड सेक डरना बंद करो, रोना बंद करो, मुझे ये तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। प्लीज जस्ट क्वाइट, प्लीज बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल मत रो, मुझसे मत डरो आस्था, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहता हुआ अरमान कुछ अलग ही दुनिया का प्राणी लग रहा था। इस सिचुएशन में वो आस्था को अपने प्यार का इजहार कर रहा था, जबकि आस्था इस वक्त दर्द से तड़प रही थी। तभी आस्था थोड़े से कम कपाते होठों से बोली, हम आपसे डर नहीं रहे हैं। जबकि अरमान को इस तरह से देखकर उसकी हवा पूरी तरह से टाइट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अरमान के इस पागलपन को हवा ना देकर आस्था ने उसे बोला, वो उससे डर नहीं रही है, लेकिन उसे हाथों में दर्द हो रहा था। अब अरमान ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद की थी और अगले ही पल बोला, तुम्हें दर्द हो रहा है, ये दर्द मैंने तुम्हें दिया है, क्या इस वजह से तुम मुझसे डर रही हो? प्लीज 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 आस्था, तुम्हें मुझसे डरना नहीं है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार, इतना प्यार कि तुम सोच भी नहीं सकती हो, तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरना है, मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करो, सिर्फ प्यार करो। अब आस्था पूरी तरह से हैरान थी कि वो बता क्या रही थी, और अरमान उसे इस वक्त अपने प्यार का एहसास करवा रहा था और बता रहा था कि उससे ना डरे। आस्था का काफी खून बहकर बेडशीट पर भी गिर रहा था, साथ साथ उसके सारे कपड़े, जो उसने आज बड़ा ही खूबसूरत सा ग्रीन लहंगा पहना था जिसमें उसकी खूबसूरती कयामत ढा रही थी, वो पूरा का पूरा खून में हो चुका था। लेकिन अरमान तो उस वक्त आस्था को अपने प्यार का इजहार कराए जा रहा था। आस्था बार बार बोल रही थी, अरमान जी मुझे दर्द हो रहा है, मुझे आपसे डर नहीं लग रहा है। लेकिन अरमान, आस्था तुम मुझसे मत डरो, प्लीज रोना बंद करो, क्यों डर रही हो मुझसे? हाँ
क्यों डर रही हो? ऐसा लग रहा था कि अरमान तो सुनना ही नहीं चाहता है कि आस्था उसे कहना क्या चाह रही है। वो तो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त अपने मन की कर रहा था, जो उसके मन में आ रहा था वो उसे बड़बड़ाए जा रहा था। अब आस्था का काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था और पुलिस वालों के डर को लेकर स्ट्रेस में थी। अरमान की सनक देख और बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो अरमान की बाजू में ही फेंट यानी बेहोश हो गई थी। अब आस्था के बेहोश होने पर अरमान अपनी सेंस में वापस आता है और लगातार अरमान ने 3 से 4 तमाचे अपने ही मुंह पर खींच कर मार दिए थे कि मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, इसे दर्द हो रहा था, इसे खून निकल रहा था और मैं इसे लगातार एक ही बात पूछ रहा था। जल्दी ही अरमान को रियलाइजेशन हुआ और फटाफट से उसने जोरों से टाइगर को आवाज लगाई। टाइगर, जो कि हमेशा अरमान के आसपास ही रहा करता था, पलक झपकते ही उसकी आंखों के सामने मौजूद था। अब अरमान ने तुरंत उसे डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। डॉक्टर, जो कि 24 घंटे अब अरमान के ही घर में मौजूद थे, तब जल्दी ही डॉक्टर अरमान के कमरे में आ गए थे और उन्होंने आस्था का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया था। तब तक आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान सभी के सभी बेबसी से कभी आस्था को देख रहे थे तो कभी आस्था के हाथ में लगी चोट को देख रहे थे, और सबकी निगाह इस वक्त अरमान पर जाकर ठहर गई थी। तभी आकाश ने सुमित को इशारा किया। सुमित ने जल्दी ही अरमान की बाजू को पकड़ा और उसे लेकर वो सीधा एक अलग कमरे में यानी स्टडी रूम में आ गए थे। वहां आकर उन्होंने अरमान से बातें करना शुरू कर दिया था। वहीं नानी माँ को जब ये पता चला कि आस्था बेहोश हो गई है, वो भी फिक्रमंद होकर तुरंत आस्था के कमरे में जा पहुंची थी। राधिका, रौनक, साथ साथ रश्मि भी इस वक्त वहीं मौजूद थी। प्रियंका को भी आस्था के बारे में पता चल चुका था, लेकिन उसे आस्था से कुछ खास लेना देना नहीं था। उसने सोचा, आस्था मरती है तो मर जाए, बेहोश है तो होती रहे, मेरा इससे क्या लेना देना। ये कहते हुए प्रियंका अपने कमरे में आराम करने लगी थी, उसने जाकर आस्था को देखना जरूरी नहीं समझा था। वहीं दादाजी भी अब पूरी तरह से मायूस हो गए थे और वो समझ चुके थे कि आकाश सुमित अरमान को लेकर क्यों गए हैं। इसीलिए जल्दी ही सुमित, दादाजी भी अब स्टडी रूम में जमा थे और अरमान केवल सपाट चेहरे के साथ एक जगह बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कुछ ना तो दर्द के भाव थे और न ही किसी तरह का कोई पछतावा था। एकदम बिना एक्सप्रेशन के साथ वो सबकी ओर देख रहा था। तभी दादाजी ने अरमान की ओर देखकर कहा, ये क्या किया तूने? हाँ क्यों डरा दिया उस बेचारी को इतना? तभी अरमान ने एक बार फिर जैसे ये सुना कि उसने आस्था को डरा दिया है, वो तुरंत बेचैन होकर बोला, क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं दादाजी? वो मुझसे डरती नहीं है, वो मुझसे प्यार करती है, सिर्फ प्यार करती है, वो मुझसे नहीं डरती है। अब जैसे ही अरमान ने दादाजी के सामने भी वही बातें रिपीट किया, दादाजी मायूस हो गए थे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अरमान का पागलपन एक बार फिर उसे पर हावी हो रहा है। एक बार फिर से अरमान के अंदर वो 6 साल का बच्चा दिखाई दे रहा है, जिस किसी के दर्द की किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं थी, जो कुछ चाहता था उसे हासिल करके रहता था। तभी आकाश, सुमित ने अरमान के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत रखते हुए कहा, अरमान
तुम आस्था के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते हो। अबीर सिंह राठौर यही चाहता है कि आस्था तुमसे डरे और वो तुमसे दूर हो और उसका फायदा अबीर सिंह राठौर उठा ले। अबीर सिंह राठौर ने आस्था को अपना बनाने की जिद बना ली है। जिस तरह से तुमने उसके बाप को मजबूर करके वो जमीन छीनी थी, उसी तरह से अबीर सिंह राठौर आस्था को तुमसे छीनना चाहता है। इसके लिए वो तुम्हें इसी तरह से भड़काएगा, इसी तरह से तुम्हारी कमजोरी पर वार करेगा, लेकिन तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है। अरमान, अगर तुम इस तरह से कमजोर पड़ जाओगे तो फिर क्या होगा? आस्था कभी भी तुम्हें दिल से प्यार नहीं कर पाएगी और इसी तरह से तुमसे डरेगी। तुम्हें इस तरह से अपने पागलपन को छोड़ना होगा। तुम्हें आस्था को अपने प्यार से अपने प्यार का यकीन दिलाना होगा। तुम आस्था के साथ इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकते हो और तुम्हें उसके साथ नॉर्मल रहना होगा, बिल्कुल नॉर्मल रहना होगा। ये कहते हुए आकाश और सुमित ने अपने ही अपने शब्दों में कितनी ही सारी बातें अरमान को समझाना शुरू कर दिया था। ध्रुव आहान भी पीछे नहीं रहे थे और अपने ही शब्दों में वो भी अरमान को इस बात को समझाने लगे थे कि उसे प्यार से आस्था को हैंडल करना है, इस तरह से डरा धमका कर उसे हैंडल नहीं करना है। दादाजी ने भी आखिर में अरमान के सामने हाथ जोड़ लिए और रिक्वेस्ट करते हुए बोले कि वो अपने आप पर कंट्रोल रखे, बिल्कुल वो अबीर के बहकावे में ना आए, बिल्कुल भी नहीं, और आस्था का पूरा ख्याल रखें। वहीं ध्रुव अरमान की मानसिक स्थिति को अच्छी तरह से समझ रहा था। ध्रुव अरमान के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जानता था और साथ ही साथ ये भी समझ चुका था कि इस वक्त अरमान क्या सोच रहा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसीलिए ध्रुव ने आहान के द्वारा कुछ मेडिसिन मंगवा ली थी ताकि वक्त वक्त पर अरमान अपने दिमाग को शांत करने के लिए कुछ मेडिसिन वगैरह खाता रहे, जिससे उसके शरीर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन उसका दिमाग संतुलन ठीक रहेगा। कहीं ना कहीं अरमान अब सबको बारी बारी से घूर कर देख रहा था।